तो आप ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी संसार में लेके हम कर रहे हैं कैसे निर्णय करें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका मापदंड क्या है। यदि हमें अध्यात्म मार्ग पर चलना है तो हमको सही करना चाहिए, तो समाज में लेके हम कैसे निर्णय करें कि सही क्या है गलत क्या है, यही तो।
कहीं स्वार्थी भी हो जाते हैं, सही करने चल रहे हैं तो लगता है इसमें हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो हम उसको बैठ मार जाते हैं।
वो कंफ्यूजन तो बने ही रहेंगे सर, वो एकदम से वॉश आउट होने वाले नहीं है। देखिए, इसका निर्णय हम यदि सीधा सीधा किसी वाक्य से करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। हमने एक वे ऑफ लाइफ धारण करनी होती है और जो वर्तमान समय में हमने वे ऑफ लाइफ या जीवन जीने का तरीका धारण कर रखा है वो आपके हर कर्म का एक उद्देश्य है सुख प्राप्ति, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन मैं सामाजिक प्राणी हूं, समाज में रहता हूं, देह और संसार के बंधन में हूं, इसी को कहते हैं कि मैं प्रकृति के बंधन में हूं। और प्रकृति महाजी कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि तीन गुणों से युक्त है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और ये गुण आपस में निरंतर बदलते रहते हैं और इनके बदलने के कारण ही मनुष्य की वासना जो है वो गहरी होती रहती है। इसलिए अध्यात्म मार्ग क्या है? अध्यात्म मार्ग इस प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है। तो इसका अर्थ हुआ मैंने तमोगुण से भी मुक्त होना है, रजोगुण से भी मुक्त होना है और सतोगुण से भी मुक्त होना है, क्योंकि ये तीनों आपस में निरंतर बदलते रहते हैं। तो इस प्रकृति के बंधन से मुक्त है कौन? जिसके हुक्म में या जिसकी सामर्थ्य से या जिसकी शक्ति से ये प्रकृति हमको चलती हुई नजर आ रही है, उस शक्ति को, उस सत्ता को ईश्वर कहते हैं या आत्मा कह देते हैं या ब्रह्म कह देते हैं, तरह तरह के नामों से हम उसको पुकारते हैं। परंतु वो सत्ता प्रकृति से ऊपर है, उसमें प्रकृति का प्रवेश नहीं है। और जब तक हमको ये प्रकृति नजर आ रही है तो इस प्रकृति का संचालन वो सत्ता ही कर रही है, उसकी शक्ति के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। क्योंकि मेरे अंदर भी क्या होता है, आप बचपन से देखिए आज तक और आगे भी आपके अंदर गुणों का ही तो परिवर्तन होगा। कभी आपके अंदर जब जबरदस्ती लोगों की चीज छीन लेते होंगे, रिश्वतें लेते होंगे, बेईमानी करते होंगे, तमोगुण है ये। और जब मेहनत करते होंगे, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते होंगे, खूब कमाई करते होंगे, खूब भोग विलास करते होंगे, ये रजोगुण है। और इन दोनों से जीव जब परेशान होता है तब वो इनसे ऊपर उठने की कोशिश करता है, वो किसी भी स्थिति में सेटिस्फाई नहीं होता, हर स्थिति से आगे बढ़ने की, मुक्त होने की कोशिश करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो इसी को सतोगुण कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है आप देखते होंगे कि उसका निरंतर डेवलपमेंट होता है, निरंतर डेवलपमेंट होता है। शुरू शुरू में सत्संग से प्रेम करता है, कुछ अच्छे कर्मों से प्रेम करता है, और जो गलतियां कर रहा था, जो पाप कर रहा था, उसके प्रति वो जागरूक होता है, तो धीरे धीरे तमोगुण से वो ऊपर उठता है और रजोगुण उसके अंदर एक्टिव होता है। सतोगुण का प्रभाव तो होता है लेकिन रजोगुण उसके अंदर एक्टिव होता है या प्रधान होता है। तो वो अध्यात्म में चलने में भी लक्ष्य बनाएगा, मैं संगत का ये काम कर दूं, मैं ये निर्माण कर दूं, उसकी एक्टिविटीज सिद्ध करती हैं कि उसके अंदर रजोगुण भी डोमिनेट कर रहा है, प्रधान है। लेकिन राइज करते करते, समझ आते आते, विवेक परिपक्व होते होते, वो इस रजोगुण के बंधन से भी मुक्त होने की कोशिश करता है। फिर उसके अंदर एक ही भाव रहता है, बस किसी तरह इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हों, ईश्वर मुझे मिले। ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रक्रिया डेवलप होती है उसके अंदर, अर्थात उसके अंदर स्वभाव में परिवर्तन हुआ है ना, इसलिए वो चीज उसके अंदर ऑटोमेटिक हुई। तो फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, बस प्रभु का नाम और अंदर प्रभु के साथ मिलना और प्रभु के क्षेत्र में प्रवेश करना, हर मामले में बस उसके लिए प्रभु ही रहता है। तो उसका ये जीवन सिद्ध करता है कि ये सत्वगुण डोमिनेट इसके अंदर कर रहा है। तो यदि वो पास्ट को देखे अपने, जो कुछ भी प्रक्रिया से जो गुजरा, तो उसको ऐसा लगेगा कि कहां मैं टाइम वेस्ट करता रहा था। अपने इस मार्ग में चलने में भी देखेगा कि मैं कहां टाइम वेस्ट करता रहा, ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हर मनुष्य को उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है, जंप नहीं लगा सकते आप किसी की नकल करके। अरे वो तो हर समय कोठरी में बंद रहता है, श्रवण करता रहता है, मैं भी यही करता हूं, फिर बाकी करने की जरूरत क्या है। तुझको अपना पता ही नहीं है, तुझे अपनी रचना ही नहीं पता है, तो नकल करने चलेगा तो गिरेगा। महाजी कहते प्रेमी कि छलांग मारेगा तो टांगे तोड़ लेगा। तो ये गुणों का चक्र है, ये प्रक्रिया सिस्टमेटिक ही चलती है। तो शास्त्रों को पढ़कर, उनको पढ़ने का फायदा ये है, सत्संग को श्रवण करके सत्संग का भी लाभ ये है कि हमें इस प्रक्रिया का पता लगता है और हम अपना एनालिसिस करने में सक्षम हो जाते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ और गुरु कहाँ खड़ा हुआ है, मैंने वो मेरी मंजिल है जहाँ गुरु खड़ा हुआ है, और किस प्रोसेस को अडॉप्ट करके मैंने आगे बढ़ना है। तो सारी बातें शास्त्र को पढ़ता है, बारीकी से एनालिसिस करता है, उसका मनन करता है और अपने स्वभाव को परखता है उसके आधार पर, तब धीरे धीरे वो अपने अंदर चेंज लाता है। इसलिए महाजी ने कहा कि प्रेमी इस मार्ग पे यदि चलना है तो इन पांच नियम का पालन करना जरूरी है, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग। तो इसको महाजी ने क्या कहा, आत्मिक उन्नति के नियम। तो आत्मा की उन्नति तो होती नहीं है, उन्नति किसकी होती है, मेरी होती है। तो आत्मिक उन्नति का मतलब क्या हुआ कि आत्मा की ओर निरंतर मैं अग्रसर होता चला जाऊं, ये आत्मिक उन्नति है। तो पहले मैंने संसार के तौर तरीके सीख रखे थे, अब मैंने आध्यात्मिक तौर तरीके गुरु पर जब विश्वास किया है तो मैं सीख रहा हूं उसके शास्त्र द्वारा। तो जो मेरा जीवन था, जो मेरी समझ थी और ये जो मुझको जीवन पद्धति सीखने को मिल रही है, मेरे में जो समझ आ रही है, इसमें कितना वाइड डिफरेंस है। अब विचार करके देखो, क्या आप इतनी हिम्मत कर पाओगे कि एकदम से अबाउट टर्न कर लो, आप फेल हो जाओ। तो इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी, ईमानदारी से जब इस पांच नियम के प्रोग्राम पर आप चलते हो तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि में बल आ जाता है और यह बल फिर आगे चलकर आपको त्याग की तरफ, सेक्रीफाइस की तरफ प्रेरित करता है और एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए भी आप तैयार हो जाते। अब देखिए महर्षि रमण घर पे बैठे हुए हैं, आठवीं क्लास उन्होंने पास की है, नाइन्थ में एडमिशन लिया है उन्होंने, और एक दिन किसी ने अरुणाचल के बारे में उनसे जिक्र किया था, मात्र बस जिक्र ही सुना था उन्होंने, वो अरुणाचल पर्वत उनको अंदर से खींचने लगा कि मैंने वहीं जाना है। और एक दिन घर पर झूठ बोल के कि मैंने स्कूल की फीस जमा करनी है, फीस उन्होंने ले गए और चल दिए। जिससे भी पूछा होगा उन्होंने, उन्होंने देखा तो था नहीं, पता भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं पता था कि वो ट्रेन जाती है वहां पर क्या जाती है, कैसे पहुंचूंगा, तो चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्होंने पता लगा कि वहां का ₹3 किराया लगता है, ₹3 उन्होंने केवल जेब में रखे अपने, वहीं अपना बस्ता छोड़ दिया, वहीं बाकी रुपए भी लिफाफ रख के छोड़ दिए, और कपड़े भी उतार दिए उन्होंने, एक कोपीन उसी में से फाड़ के उन्होंने बांधी और वो ₹3 जेब में रखकर चल गए। कहते नहीं, बाद में पता लगा कि ट्रेन जाती है, लेकिन ये पता नहीं लगा कि वो तिरुवन्नमलाई तक जाती है, कि अरुणाचल ही तो तिरुवन्नमलाई में है। तो वहां पहुंचकर स्टेशन पे पता लगा कि एक दूसरे स्टेशन से ट्रेन जाती थी, उन्होंने टिकट लिया, वहां पहुंच गया, पता लगा उसके आगे ट्रेन आगे जाती है, तो 4 आने उनके पास कम थे किराए के, तो सोचे लगे कैसे पहुंचूंगा, 4 आने तो कम है। अब देखो ईश्वर की लीला, वो स्टेशन में खड़े खड़े देखते हैं कि चवन्नी जो है वो रेल की पटरी पड़ी हुई है, उन्होंने चवन्नी उठाई, अपना टिकट खरीदा और अगले स्टेशन पर आए। वहां से पता लगा कि ये ट्रेन तिरुवन्नमलाई भी जाती है, लेकिन अब पैसे ही नहीं थे, वहां से पैदल ही वो तिरुवन्नमलाई अपने चल पड़े। अब विचार करने की बात ये है, देखिए कि मैं क्या उनकी नकल करके सेक्रीफाइस कर सकता हूं ऐसा? कहीं तो मैं ये सोचूंगा जब ईश्वर मार्ग पे चलना है तो झूठ क्यों बोलना, ये तो पाप है। लेकिन महर्षि रमण जैसा व्यक्ति जिसको संसार से कोई मोह ही नहीं है, इतने गहरे संसार लेके पैदा हुआ है वो, दूर दूर तक मोह नहीं है, वो इसके बारे में नहीं सोच रहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं, सच बोल के पहुंचूं। उन्होंने फट से झूठ बोल दिया, चल दी। अब उसमें गुण है दोष है इसका विचार नहीं कर रहे हैं, वो एक धुन है उनके अंदर कि भाई मैंने पहुंच रहा है वहां। और देखिए बिल्कुल निराश्रित, पैसे भी आश्रित रहते हैं, लेकिन ना उन्होंने कोई नौकरी करी, ना कभी पैसा कमाने की कोशिश करी, ना ये सोचा कि एक कोपीन है तो नहाऊंगा भी तो कैसे पहुंचूंगा, ये फट गई तो दूसरी कहां से आएगी, कुछ नहीं। कितना बड़ा दिल चाहिए, कितनी गहरी ईश्वर प्रणायता चाहिए, आप क्या नकल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सत्पुरुष का जीवन किसी को भी देखो आप, वो अलबेला होता है। महात्मा बुद्ध का अलग जीवन था, महाराज जी का अलग तरह का जीवन था, किसी सत्पुरुष ने किसी की नकल नहीं की, उनकी अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है, यूनिक उनका जीवन होता है। और कभी कोई सत्पुरुष ये नहीं कहता किसी भी शिष्य से कि तुम मेरी नकल करना, वो हमको रास्ता बताता, कि तुमने कैसे चला। तो इसीलिए आपके अंदर जो त्याग की कैपेसिटी है, जो हम घोर भोगवादी बने हुए हैं, घोर राजसिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मान लो त्याग कहां से आया? बच्चे की जान जा रही हो तो मां अपनी जान भी दे सकती है, इतना त्याग भी कर सकती है, ईश्वर के लिए त्याग नहीं कर सकती हो। मोह में आकर तो अपनी जान भी दे सकती है बच्चे के लिए, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं दे सकती। तो हम स्वार्थी हैं, हम मोहवादी हैं, हम त्यागी नहीं हैं। ये सारा का सारा त्याग हमारा, सारा सारा सेक्रीफाइस, चाहे पूरा जीवन ही बच्चों के लिए क्यों ना खर्च कर दें, इसकी ईश्वर के दरबार में कोई कीमत नहीं। तो शास्त्र पढ़कर हमारे सामने तो बड़ी साधारण रूप में महाराज जी ने समतादास छोड़ दिया। कहां लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, हमें तो मौका मिल गया कि पूरी दुनिया में ना ऐसे शास्त्रीय रचना हुई आज तक, ना कोई संभावना है, क्योंकि हमारे आज के वक्त में समतावलास जैसे शास्त्रीय रचना हुई। जैसे कि महाजी कहते थे कि गीता एक अनुपम शास्त्र है, वेद व्यास ने जो इसकी रचना की कृष्ण के नाम से, ऐसा शास्त्र ना कभी लिखा गया ना कभी लिखा जाएगा, वो गीता को अनुपम शास्त्र बोलते हैं। और समता विलास के बारे में भी कहते थे कि प्रेमी इन्होंने ये गीता लिखी। तो गीता को समझना है तो समता विलास समझ लो, उसके बाद यदि गीता पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा गीता में कुछ भी नया नहीं है जो समता विलास में ना हो। तो आपने आज से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक कैसे जीना है, सब कुछ समतावलास में लिखा हुआ है। इसलिए जैसे जैसे मेरा विकास होगा, ये समतावलास मुझको गाइड करती रहेगी। पूरी जिंदगी मैंने इसको गुरु समझकर, गुरु ज्ञान समझकर इस पर मनन करते ही रहना है, करते ही रहना। इसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। चैप्टर के चैप्टर पढ़ता रहूं मैं और ये अंदर से पाल लूं, मैं सब जानता हूं, नहीं क्या क्या लिखा है मुझे पता है महाराज जी क्या कह रहे हैं। शास्त्र ऐसे नहीं पढ़े जाते। विवेकानंद की जीवनी पढ़ा था एक बार मैं, तो उसमें पढ़ा था मैंने अवधूत गीता विवेकानंद अपने साथ रखते थे, बड़ी छोटी सी पुस्तक है अवधूत गीता। अब विवेकानंद जैसा विद्वान गुरु भक्त ईश्वर भक्त वो क्या करते थे, अवधूत गीता साथ रख। तो शास्त्र की कीमत क्या होती है, ये तो भक्तों के जीवन से पता रहता है, क्या सीखते हैं उसमें से, क्या धारण करते हैं। तो हम भी यदि वही श्रद्धा रखें और ये समझें कि पूरी जिंदगी मुझको इसकी जरूरत है, तब उसको फिर हम उसी श्रद्धा से उसी जिज्ञासा से कहते हैं। तो ये जो समता विलास है यही आपको सारा बोध कराएगी, भाई कहां गलती कर रहे हो और क्या तुमको करना चाहिए क्या तुमको नहीं करना चाहिए। यह आइटम वाइज डिटेल्स नहीं बताएगी आप। आपको एक मेथड बता देगी कि कैसे आपने जीना है। जैसे कि मान लिया दान का सिद्धांत, ठीक है, मैं यदि अपने जीवन में इस दान के सिद्धांत को जब मैंने धारण किया तो मैंने उसकी क्या प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट की, उस एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा इशारा मिल सकता है। कि मैंने पहले तो यह सोचा था कि महाराज जी ने जो कुछ भी लिखा है मैं उसको समझूंगा, मेरी कोई संगत नहीं थी उस समय, जो कुछ ये महाराज जी ने लिखा है मैं समझूंगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए जीऊंगा, ये मेरे अंदर इस मार्ग पर चलने से पहले धारणा बन चुकी, या यूं कह लिए जब मैंने चलना शुरू किया तो ये धारणा मेरे अंदर बन चुकी थी। तो इसीलिए मैंने दिल्ली में था डिफेंस में आश्रम से संतव्यास और संतप्रकाश ग्रंथ खरीद के लाया और अपनी ड्रायर में ऑफिस की रख लिया। एक घंटे का लंच होता था तो लंच में मैं स्टडी करता। पहले मैंने संतव्यास शुरू करी तो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते गए। तो बीच में मुझको जब वो ये चैप्टर पढ़ने को मिला जिसमें महाजी ने लिखवा था कि अपनी इनकम का 10% निष्काम सेवा के लिए निकालना चाहिए। अब देखिए मेरी श्रद्धा में कमी नहीं थी कोई भी, अंदर से प्रण भी था कि मैं महाजी जैसा गाइड कर रहे हैं वैसा करूंगा, लेकिन मैंने अपने मन की हालत देखी उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि 10% को निकाल सके। सत्य का बोध होते हुए भी महाजी में श्रद्धा होते हुए भी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उतना सेक्रीफाइस कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने ये निश्चय किया कि कहीं से यदि 2 पैसे भी गलत आते हैं मेरे पास वो तो मैंने अपने पास नहीं आने देने, उस पर तो फुल स्टॉप। और नंबर 2 कि 1% तो मैं निकालता हूं तुरंत ही, मैं 1% तो शुरू करता हूं जैसे से हिम्मत आएगी समझ आएगी देखेंगे यार। तो पहले वर्ष मैंने केवल 1% जो है वो अपनी पे का निकालना शुरू किया और एक वर्ष जब बीत गया तो दूसरे वर्ष फिर मैंने 2% निकालना शुरू किया। देखिए मैंने नियम को गलत नहीं समझा, नियम को सही समझा और ये भी प्रण कर लिया ये करना जरूर है। अरे गुरु कह रहा है कि ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये तूने 5 नियम का पालन करना है भाई। दान की बात आती है वो लिख रहे हैं, यदि गोलमोल लिखा हो तो आप अपनी मनमर्जी करोगे, जब क्लियर कट लिखा हुआ है तो आप मनमर्जी कैसे चलेगी आपकी। तो दूसरे वर्ष 2% निकाला और कभी उसमें से कम नहीं किया, चाहे कर्ज लेके भी काम चलाया मैंने लेकिन वो 2% में कभी कमी नहीं है। उसके तीसरे वर्ष फिर मैंने 5% निकाला और चौथे वर्ष फिर मैं सीधा 10% आ गया। तो वो हिम्मत बनाने के लिए मैंने देखा कि महाजी लिख रहे हैं संतव्यास में इन 5 नियमों को जो जीवन में अपनाएगा उसकी बुद्धि में बल आ जाएगा। बल क्या होता है? त्याग बल आ जाएगा बुद्धि कि ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए बड़े सेक्रीफाइस की जरूरत है और तू गृहस्थी जीव है, तू स्वार्थी जीव है, तेरा सारा जीवन स्वार्थ में कटाए, इतनी हिम्मत कहां से लाएगा तू? या तो तू ईश्वर को ही छोड़ बैठेगा, अरे भैया ये तो बड़े त्याग की बात है मैं तो इतना त्याग कर ही नहीं सकता, तो फिर तो मैं तो ईश्वर मार्ग पर चल भी नहीं सकता। तो कहां महाराज जी कह रहे हैं कि एक साथ तुम सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन लक्ष्य लेके तो चलो, लक्ष्य तो बनाओ, यदि समझ आ गई तो लक्ष्य तो बनाओ। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सेक्रीफाइस करने की त्याग करने की आदत डालो। स्वार्थी भी तुम 2 दिन में नहीं बन गए, स्वार्थ भी धीरे धीरे बने हो, घोर स्वार्थी भी धीरे धीरे बने हो, घोर पापी भी धीरे धीरे बने हो, ना कोई एकदम से जो है परम जो है साधु बन जाता है, ना कोई एकदम से जो है वो पापी बन जाता है, जो भी बनता है उसके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए तूने तमोगुण को रजोगुण को सतोगुण को तीनों का त्याग करना है। अब विचार करो ये तीनों गुण तेरे मन में स्थित है, मन प्राकृतिक है ना, क्योंकि मन इस देह और संसार से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा इसमें मन में कुछ संस्कार ही नहीं है तुम्हारे, तो ये तीनों गुण तेरे मन के अंदर मौजूद है और उसी के अंतर्गत तेरे अंदर डिजायर्स उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही हैं। तो जो डिजायर्स उठ रही हैं वही निर्णय करती हैं कि ये तमोगुणी डिजायर है, ये रजोगुणी डिजायर है या सतोगुणी डिजायर है। और तीनों डिजायर्स के बारे में महाराजी ने एनालिसिस किया हुआ है, संतव्यास पढ़ के वासना देवी देखें, तीनों का एनालिसिस मिल जाएगा। तो वहां से आप सीखोगे कि मेरे अंदर किस प्रकार की इच्छाएं उठ रही हैं, कितनी प्रगति की जरूरत है, कितने अटेंशन की जरूरत है, हर चीज सीखोगे। सीखोगे तब ना जब उसको लगातार पढ़ते रहोगे, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। वो पढ़ने की प्रक्रिया आपकी निरंतर है, चाहे दो पेज रोज पढ़ो, चाहे आधा घंटा रोज पढ़ो, चाहे घंटा भर रोज पढ़ो, लेकिन उसको बड़े प्रेम से, बड़े कंसंट्रेशन से, कुछ करने की दृष्टि से पढ़ो, कुछ सीखने की दृष्टि से पढ़ो। तो आप जहां खड़े हुए हो, जो आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप उसमें से जरूर चीजें चूज करोगे। यदि आपने अपना विकास करना, संसार में जैसे विकास करते हैं, तो हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से तो चूज करते हैं, मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, कौन सी जो है क्वालिफिकेशन में पूर्ण करूं, अपनी कैपेसिटी होती है, कोई किसी की नकल नहीं कर सकता। उसी प्रकार अध्यात्म भी है कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें से चूज करता हूं, और ये भी देखता हूं मैं बेईमानी तो नहीं कर रहा कि कंसेशन ले रहा हूं, स्पीड इतनी स्लो कर दी कि कहीं पहुंचूंगा ही नहीं मैं। तो आप जब इस चीज को समझ लेते हो कि ईश्वर प्राप्ति के बिना या ईश्वर के मार्ग पर चलने के बिना मेरे जीवन में दुख बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे संसार में कितनी भी दिन दुनी चौगुनी प्रगति क्यों ना कर लूं, मेरे दुखों का बढ़ना लाजमी है, कंपल्सरी है। दुनिया की कोई ताकत उन दुखों से मुझे बचा नहीं सकती। इसलिए मैंने जो सुख के ख्वाब देखे हैं बच्चों के लिए अपने बारे में, तो मैं ये भूल जाऊं, ये मेरी भयंकर मिस्टेक है कि वो संसार में प्रगति कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो ये शास्त्र पढ़ने का फायदा ये होता है, सत्संग श्रवण का फायदा ये होता है। सत्संग उसे ही कहते हैं जो इन शास्त्रों का सही सही विवेचन जहां हो और वो सुनने को मिले, वही सत्संग है, नहीं तो काय का सत्संग हुआ। ये तो कहानी कुछ से सुन के आप अपना मनोरंजन कर रहे हो, वहां भी एक घंटा पास कर दे। शास्त्र का मर्म यदि समझ में ही नहीं आ रहा है तो काय का सत्संग हुआ। तो इसीलिए उस शास्त्र को मैंने समझना है, उस गुरु की ऋषि की बात को मैंने समझना है, क्योंकि वो बात केवल मेरे कल्याण के लिए लिखी गई है। मैंने तो ऐसे पढ़ना है, ये संत रविदास केवल मेरे लिए लिखा गया, प्रभु ने मेरे लिए भेजा ताकि मेरा जीवन बर्बाद ना हो, मेरा जीवन सफल हो जाए। तो मैंने उस पुस्तक को अपना जीवन समझकर, ये मेरी लाइफ है, इस लाइफ को मैं कैसे त्याग सकता हूं। दुनिया तो डेथ ट्रैप है। कैसे डेथ ट्रैप है? दुनिया आपको शरीर बना देती है, गुरु आपको जीव बनाता है, दुनिया आपको मनुष्य करके संबोधन करती है, गुरु आपको जीव करके संबोधन करता है, कहता है तू जीव है, तू जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तुझे होश ही नहीं है, ये देह मरने वाली चीज है और तू बचने वाली चीज है, तेरे अंदर जीवन है, तेरे अंदर होश है, तू जीवित वस्तु है और देह जड़ वस्तु है, तू कैसे देह बनकर घूम रहा है? तो तेरे बुद्धि के पतन की यह आखिरी अवस्था है। जो मनुष्य 100% अपने आप को देह बनकर ही जीता है, यह उसकी बुद्धि की पतन की आखिरी स्टेज है, इससे नीचे पतन नहीं हो सकता। और ऐसा पतन वाला ये मनुष्य जो है, अपने कितना अहंकारी है, अपने को क्या क्या नहीं समझता, क्या नहीं दिखाने की कोशिश, चार अच्छे काम कर लेगा तो बड़े अहंकार में घूमता है कि देखो मैंने चार अच्छे काम कर लिए। तो गुरु आपकी आंख खोलता है, सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बोध कराता है, तू है कौन, तो क्या बना घूम रहा है। तो जब गुरु की ये बात मेरी समझ में आती है कि मैं जीव हूं, तब आपको सही रूप में अध्यात्म विद्या का की समझ आनी शुरू होती है। इससे पहले तो आप अध्यात्म विद्या के वर्ड्स को कुछ का कुछ समझते रहते हो और समझते हो कि मैं सब समझ रहा हूं, उसके वर्ड्स को आप कुछ का कुछ समझते रहते हो। तो इसीलिए शास्त्र का काम है सबसे पहले अपने आप को सही समझना कि मैं कौन, उसके पश्चात यह समझना कि देह और संसार क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे ये बनता है, कैसे ये खत्म होता है। इस देह की मौत होती है तो मेरा क्या होता है, क्या साथ लेके जाता हूं मैं, क्या छूट जाता है। फिर नई देह मुझको मिलती है तो क्या मिलता है मुझे। सारा विज्ञान आपने सीखना ही सीखना। देखो महाजी संतरास में क्या लिख रहे हैं, जीव को देह क्यों मिलती है। संत अभिलाष में ये क्वेश्चन महाजी ने खुद लिखा, जीव को देह क्यों मिलती है। हम जरा विचार करके देखें, इसी दिन हमको पढ़ते हुए हो गए, हमने संत अभिलाष में से महाजी के हाथ का लिखवा ये प्रश्न कभी ध्यान से पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो सबसे पहले तो मैं देह हूं ये अहंकार टूटता हूं। गुरु तो साहब लिख रहा है संत अभिलाष में, प्रश्न लिख रहा है कि जीव को देह क्यों मिलती है। तो महाजी मुझको मनुष्य कह रहे हैं या जीव कह रहे हैं। महाजी को पता है मैं जीव हूं, मुझको देह मिली है और इस देह बंधन से मुक्ति के लिए ही गुरु बनाया है मैंने उनको, इसी के लिए वो गुरु रूप में सामने आए। फिर वो इसका उत्तर लिखते हैं, ख्वाहिश पूर्ण करने की खातिर। इसका मतलब पूर्व जन्म में जब इस मेरी देह की मौत हुई तो मैं ख्वाहिश लेके वहां से विदा हुआ था, तमन्ना लेके, वासना लेके, वासनाओं के संस्कार लेके उस देह से मैं छूटा था। तो जो वासना मैंने तैयार की थी उसी वासना की पूर्ति के लिए ईश्वर ने उसी के अनुसार देह दी, उसी के अनुसार मुझको समाज दिया और संसार दिया। तो ईश्वर ने कोई गलती की क्या? ये मेरी गलती थी, मैं अंदर कौन सी इच्छा पालता। तो इसका मतलब हो गया कि जो कुछ भी मनुष्य अपने आप को देह समझकर वासना पालता है वो पांच विकार से युक्त वासना होती है, तीन गुणों से युक्त वासना होती है। महाराज कह रहे हैं कि पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे तेरी देह बनी, इसी से ये सृष्टि बनी। तो इसीलिए ये पांच विकार जो पांच तत्व के हैं ये तेरा जीवन बन जाते हैं। यदि तू अपने आप को देह समझता है तो तेरी सारी इच्छाएं, सारे लक्ष्य पांच विकार के अंतर्गत होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब बताइए पूरा का पूरा 100% मेरा संसारी जीवन पांच विकार युक्त होगा नहीं होगा। अब ये पांच विकार जिसमें बढ़ते हैं आप बताओ मुझे, तो आप उसको पाप कहते हो या पुण्य कहते हैं। किसी के अंदर लोभ बढ़ जाए, पैसे की इच्छा बढ़ जाए तो बेईमानी को उतरता नहीं उतरता। पहले तो ईमानदारी से कमाने की कोशिश करता है, जब भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तमन्ना पूरी नहीं होती है तो गलत रास्ता पकड़ लेता है। तमन्ना पूरी करनी, उसका एक ही उद्देश्य है तमन्ना पूरी करनी। ना जायज प्रॉफिट लेता है, ना जायज फीस लेता है, ना जायज तरीके अपनाता है। तो पांचों विकार आप अच्छी तरह से जानते हो, सब जानते हैं कि ये विकार हैं और जब ये बढ़ते हैं तो हम उसको घोर पाप कहते हैं और उस व्यक्ति को घोर पापी कहते हैं। तो मैंने जीवन जीने का तरीका ही जब पापी बनने का चुना है तो आपके जीवन में दुख बेचैनी बढ़ेगी या कम होगी, आप विचार करके देखो। तो इसीलिए जो फिर दूसरा जीवन है तो गुरु कहता है तू जीव है और तेरे साथ मन है जिसमें ख्वाहिश प्रिजर्व है, जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है, वो ख्वाहिशों के अनुसार तेरा स्वभाव बना हुआ है, ख्वाहिशों के अनुसार तेरे जो है तेरे अंदर गुण बने हुए हैं, गुण दोष बने हुए। तो अब मैंने इस प्राकृतिक बंधन से, क्योंकि ये सारे गुण दोष प्रकृति में तीनों विकार तीनों जो है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी प्राकृतिक चीज है और ये पांच विकार भी प्राकृतिक चीज है। तो मैं जब तक अपने आप को देह समझ रहा हूं ये विकार मेरे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, इसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा। तो यदि मेरी बुद्धि में होश आया है गुरु धारण के कारण करने के कारण, तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम बदलना है। तो मैंने मन के अंदर क्या डिजायर पैदा करनी है, पहले तो मैं ये सोचता हूं कि इस प्रकृति के बंधन से मुक्त कौन सी चीज है। तब मैं शास्त्र के द्वारा समझता हूं, गुरु ज्ञान के द्वारा समझता हूं, उसको ईश्वर कहते हैं, जो इस मन के बंधन से मुक्त है, देह के बंधन से मुक्त है और संसार के बंधन से मुक्त है। और महाराज कह रहे हैं वो ईश्वर तेरी देह के अंदर ही मौजूद है। इस देह को क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र का मालिक इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसी को महाराज ने समता व्यास में लिखा, संग शक्ति और असंग शक्ति। जो गीता में क्षेत्र है उसको महाराज ने लिखा संग शक्ति, जिसमें देह आ गया और मन इंद्रिया बुद्धि आ गई, ये जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सारा का सारा क्षेत्र है, फील्ड है ये। और क्षेत्रज्ञ कौन है, जो इस देह का संचालन कर रही है जो शक्ति, वो है क्षेत्रज्ञ, वो है असंग शक्ति, अर्थात प्रकृति से अटैच्ड नहीं है, प्रकृति से वो फ्री। जब वो प्रकृति से फ्री है तो विचार करके देख लीजिए, ये तीन गुणों से मुक्त होगी या नहीं होगी, पांच विकारों से मुक्त होगी या नहीं होगी। मैंने जब समता विलास पढ़ के सीखा कि विकारों से मुक्त तो फिर ईश्वर सत्ता है, तो मैंने यदि विकारों से मुक्त होना है, पाप से मुक्त होना है, तो मुझको ईश्वर सत्ता के साथ एक होना ही पड़ेगा। ये मेरे जीवन जीने की डायरेक्शन है, ये गति है। अब तो सोच ले, जिनको तू जानता है पाप है, कितने धीरे धीरे छोड़ना चाहता है, ये तू समझ ले, तेरी जीती सामर्थ्य है। या तो समाज को बढ़ा, नहीं तो अपनी बंधन की यात्रा लंबी कर ले, ये तो करेगा तो क्या कर सकता। तो यदि हम अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में जो भी बेसिक्स हैं, मैं आपको सामने बेसिक तो बता रहा हूं, कोई गहरी चीज तो नहीं बता रहा। तो महाराज जी ने इन सब बातों का विश्लेषण समतावास में किया या नहीं किया है? हम कहते हैं समतावास बड़ी कठिन है। अरे छोड़ो कठिनाई को, तुमने अभी क्या करना है कठिन चीजों का, तुम्हारे मतलब की है क्या वो? लेकिन बेसिक तो तेरे मतलब का है, अपने बारे में समझ, प्रकृति के बारे में समझ, ये तो आ चाहिए तुझको। तो सबसे पहले इन चीजों को तो सीख समता विलास से, और ये पूरी समता विलास में बिखरी पड़ी है, तो पूरी समता विलास ही पढ़नी पड़ेगी तुझको यदि इन चीजों को बारीकी से सीखना है। तो इन चीजों से फिर मैंने धीरे धीरे कैसे ऊपर उठना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो महाजी एकदम से तो कुछ नहीं कह रहे हैं, महाजी ये कह रहे हैं प्रेमी सबसे पहले उन चीजों का त्याग कर जिसको तू समझता है कि गलत है। हम सब जानते हैं कि बेईमानी से पैसा कमाना गलत है, तो छोड़ दे बेईमानी, वो भी तू धीरे धीरे छोड़ना चाहता है तो तू स्वतंत्र है, धीरे धीरे छोड़। लेकिन सोच ले, तू ऐसे कह रहा है मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं लेकिन बहुत धीरे धीरे होना चाहता हूं, कि तेरा स्टेटमेंट ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं लेकिन बहुत धीरे धीरे मुक्त होना चाहता हूं। आप कोई कैसा मूर्ख आदमी है, ये दुखों से मुक्त होना भी चाहता है बहुत धीरे धीरे भी चाहता है, यही कहोगे ये नासमझ आदमी है, या कहोगे बच्चा बुद्धि है इसकी? तो हम भी निर्णय ऐसे ही करते हैं बच्चा बुद्धि की तरह से, बुद्धिमान भी कहते हैं और प्रैक्टिकली हम नासमझ, हम बुद्धू। तो मूर्ख बुद्धि लेकर संसार के हम जी रहे हैं, और जो गुरुमुख बुद्धि है या गुरु का जो ज्ञान है, इसको महाराज जी सत बुद्धि कहा करते थे, जिसको वाणी कह रही है सत बुद्धि धर बावरे। बावरा कहते हैं आधे पागल को, तो मनुष्य तो आधा पागल है ना, कुछ का कुछ समझ रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ए बावले तू सत बुद्धि धारण कर। तो समता विलास क्या है, ये सत बुद्धि है, इसको मैंने अपनी बुद्धि में धारण करना है, इसके अनुसार सोचना है, इसके अनुसार मैंने निश्चय बदलने हैं, इसके अनुसार बनने के लिए मैंने अपनी जीवन प्रक्रिया बदलनी है, उसका प्रोग्राम बनाना है मैंने, लोगों की नकल नहीं करनी है, मैं नकल में फंस जाता हूं। सब उल्टा सीधा चल रहे हैं तो मैं भी सत्संगी होने के बाद भी उन्हीं के निकल करता हूं। अरे इनसे तो मैं अच्छा चल रहा हूं, बड़ा संतोष हो गया, इनसे अच्छा चल रहा। अरे पहाड़ा, तूने गुरु को देखना था, तूने अपनी स्थिति को देखना था कि कितने जन्मों से धक्के खा रहा है। चार लोग मूर्छा कर रहे हैं तो उनकी नकल कर रहा है, तो कोई बुद्धिमान भी तो होगा, उसकी नकल क्यों नहीं करता जो नकल ही करनी है। अरे संसार में कोई बुद्धिमान भी तो होगा जिसने शास्त्रों का मर्म को समझा होगा, उसके अनुसार चलने का प्रोग्राम बनाया होगा, उसको क्यों नहीं देखता। गुरु को देख के तो ये डर लगता है, यदि त्याग तो मैं नहीं कर सकता, तो चलने वाले व्यक्ति को देख ले। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करता हूं, क्योंकि इतना धीरे नहीं कि कोई प्रगति नजर ही नहीं। मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है सके से, और जितना जल्दी हो सके मैंने अधिक से अधिक उसको प्राप्त करना। तो इसलिए माया कहते हैं प्रेमी मौत को याद रख कि तेरा जीवन कितना सा बचा हुआ, टाइम पीरियड कितना सा बचा हुआ, कितना बिगड़ा हुआ इंसान है तू, क्या विचार करके तो देख। तो कुछ तो स्पीड बना, तो तूने अपने हिसाब से खुद ही निर्णय लेने हैं, तू किसी की नकल नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति की अलग स्पीड होती है, हर व्यक्ति की अलग समझ होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग सेक्रीफाइसिंग कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी के अंदर ऑलरेडी सत्वगुण डोमिनेट कर रहा है, किसी के अंदर रजोगुण डोमिनेट कर रहा है, किसी के अंदर तमोगुण डोमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए कोई किसी की नकल नहीं है, हर जीव का अपना अलग रास्ता है, लेकिन रास्ता वही है जो गुरु दिखा रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से उसमें से छांटना है, लेकिन मौत को याद रखना है कि दिन कम बचे हैं, इतना स्लो चलूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा मैं। तो मैंने प्रण करना है, समता ब्लास से यदि आपने कुछ सीखना है अपनी स्थिति के बारे में, तो एक चैप्टर है बुद्धि की अवस्थाएं, इसमें चार अंधकार की अवस्थाएं हैं, तीन प्रकाश की अवस्थाएं हैं। तो बुद्धि की प्रकाश की जो पहली हालत है वो स्थिति मैंने इस जन्म में बनानी ही बनानी है। कुछ तो मैं प्रोग्राम बनाऊं अपना, बुद्धि की अंधकार की अवस्था में तो मैं जाने से रहा, यदि मैंने ईश्वर के मार्ग पर चलना है तो अंधकार की अवस्था में जाऊंगा मैं तो प्रकाश की अवस्था में जाऊंगा। तो बुद्धि की जो पहली प्रकाश की अवस्था है, अरे कम से कम इतना तो करूं मैं, दूसरे तीसरे जन्म के लिए छोड़ दो, लेकिन पहली तो इस जन्म में करके जाओ। तो पढ़े संत अवराज, इतना लक्ष्य तो बनाए कि मैं इतना यहां तक पहुंच जाऊं, इतना तो मैं कर सकता हूं। तो इसलिए गुरु ने वो पहली बुद्धि की प्रकाश की अवस्था लिखी है, तो ये है जीव की पहली प्रकाश की अवस्था, उसको पढ़ के मैं उसके अनुसार प्रोग्राम बनाऊं और उसके साथ चलने की कोशिश करूं, तो धीरे धीरे सारी समझ में आ जाएगी क्या गलती कर रहा हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन के बादल छट जाए। ओम धर्म सत्य।